सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तो यार दिव्य ध्वनि लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियु बागिदे पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की शल्य भेदों की चर्चा है। शल्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। द्रव्य शल्य के भी दो भेद हैं, कर्म द्रव्य शल्य और नो कर्म द्रव्य शल्य। कर्म द्रव्य शल्य के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी कर्म द्रव्य शल्य, चारित्र मोहनी कर्म द्रव्य शल्य। नो कर्म द्रव्य शल्य के तीन भेद हैं, सचित्त नो कर्म द्रव्य शल्य, अचित्त नो कर्म द्रव्य शल्य, मिश्र नो कर्म द्रव्य शल्य। भाव शल्य के तीन भेद हैं, माया भाव शल्य, मिथ्या भाव शल्य, निदान भाव शल्य। निदान भाव शल्य में तीन भेद हैं, प्रशस्त निदान भाव शल्य, अप्रशस्त निदान भाव शल्य, यो भोगकृत निदान भाव शल्य। ये टोटल शल्य के भेद हो गए। कल के दिन नो कर्म द्रव्य शल्य की चर्चा हो रही थी। जैसे हमारे सामने निमित्त मिलते हैं, वैसे ही कर्म भी फल देते हैं। नौ कर्म के अनुसार कर्म भी अवश्य फल देते हैं। जैसे कहते हैं, जैसी गति वैसी संगति, जैसी गति जैसी संगति वैसी गति, जैसी संगति होती है वैसी ही जीव की गति बनती है। संगति के अनुसार ढलने की आदत रहती है जीव को, इसलिए जीव संगति के अनुसार होना चाहता है। ये उसकी स्वाभाविक प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है ना। भगवान के सामने जाता है तो मैं भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान बनने के भाव आ जाते हैं। गुरु के सामने जाता है तो मैं भी ऐसे गुरु बन जाऊँ, कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा आत्मकल्याण होगा। गुरु भी नौकर्म हैं, भगवान भी नौकर्म हैं, और जहाँ भी अपन जाते हैं हमारे आँखों से दिखाई देने वाले सारे पदार्थ नौकर्म ही कहलाते हैं, और अपना शरीर भी स्वयं अपने लिए नौकर्म माना गया है। शरीर को देख करके भी अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में उठते हैं। अपना शरीर कुरूप हो तो कुरूप है ऐसे भाव आते हैं, सुंदर हो तो मैं कितना सुंदर हूँ इस प्रकार के भाव आते हैं। आते कि नहीं आते, स्वाभाविक है जीव जिसको देखता है वैसे ही परिणाम करने लगता है, और जैसे वह परिणाम करने के लिए तैयार होता है, कर्म भी उन भावों के अनुरूप और जीव के उस प्रवृत्ति के अनुरूप फल देने को तैयार होती। ये स्वाभाविक परिस्थिति। थोड़ा यह स्वाभाविक परिस्थिति है। इस विषय को हम प्रत्येक समय देख सकते हैं, प्रत्येक समय देख सकते हैं। नौ कर्म के अनुरूप भाव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे नौ कर्म होते हैं वैसे ही परिणाम होते हैं। नौ कर्म और परिणाम, इन दोनों के अनुकूल कर्म भी फल देने को तैयार होते हैं। जैसे हम धूप में चले जाते हैं, धूप यदि हमारे लिए अनिष्ट है तो अनिष्ट भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ आर्त ध्यान भी हो सकता है। यदि धूप में न जा करके इष्ट वस्तु हम छाया में ही रहते हैं तो छाया में रहने से छाया के अनुकूल परिणाम होते, ये होते हैं ना, स्वाभाविक है। और जैसा परिणाम वैसा ही कर्मबंध। धूप में न जाकर के हम छाया में बैठे हैं तो आर्त ध्यान नहीं होगा, धर्म ध्यान में हम मन लगा करके बैठ जाएंगे। धूप में जाते हैं, धूप बहुत जल्दी बहुत तेज लग रही है, तो ये क्या धूप बहुत तेज लग रही है, अनिष्ट संयोग वस्तु का परिणाम उत्पन्न होने पर यदि वह अपने पुरुषार्थ को सही नहीं रख पाता है तो आर्त ध्यान भी हो सकता है। मतलब यह है कि नौ कर्म के अनुरूप हमारे परिणाम अवश्य होते हैं, ये सिद्ध है। अब नौ कर्म के अनुरूप परिणाम यदि होते ही हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सावधानी कहाँ रखना है, नौ कर्मों में ही रखना है। जो नौ कर्म हमारे परिणामों की उत्पत्ति में कारण हैं, उन परिणामों को संभालने के लिए कौन से नौ कर्म के पास हम जाएं, किसके सानिध्य में रहे, ये निरंतर हमें चिंतन भी करना चाहिए, किसके बीच में रहे, किसके संपर्क में जाए नहीं जाए, यह विवेक सतत रखना चाहिए। उस विवेक के अनुरूप ही हमारा जीवन बनने वाला है, अन्यथा हम अपने परिणामों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कंट्रोल न करते हुए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान यदि होगा तो व्यर्थ रूप से ही कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंद होगा। कर्म बंद से बचने की प्रक्रिया यह भी आवश्यक है कि हम ऐसे निमित्त में ज़्यादा न रहे जो निमित्त हमारे लिए प्रतिकूल है। जो निमित्त हमारे लिए अनुकूल है उस संपर्क में हम विशेष रूप से अधिक रहें, पर प्रतिकूल निमित्त में ज़्यादा न रहें। प्रारंभिक अवस्था में साधक को प्रतिकूल निमित्तों से बचना चाहिए। जब प्रौढ़ अवस्था में साधक होता है तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां समान होने पर वे अपने पुरुषार्थ के माध्यम से क्या कर सकता है, आर्त और रौद्र ध्यान से बच सकता और सतत धर्म ध्यान में रह सकता है। परंतु ये सबको संभव नहीं, संभव नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक बुरे निमित्तों से बचते हैं और अच्छे निमित्तों के साथ रहते हैं। एक मुनि महाराज हैं, वे बुरे निमित्तों से पूर्णतः बच चुके हैं। बचने के बाद भी यदि बुरे निमित्त के पास जाते हैं और परिणाम बिगड़ते हैं तो बुरे निमित्तों से वे दूर रहने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। यदि अपने परिणामों को संभाल नहीं सकते तो बुरे निमित्त से बचने का भी प्रयत्न वे अवश्य करेंगे। यदि हम बच सकते हैं उसका कोई हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता, हमारे परिणामों में उथल पुथल करने का निमित्त नहीं बन सकता। प्रतिकूल होने पर भी हम प्रतिकूल को भी अनुकूल बना करके रह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसको कर्म निर्जरा का निमित्त बना करके उसी परिस्थिति में रह जाते हैं। ये बहुत आवश्यक है, प्रौढ़ता आनी चाहिए, क्योंकि नो कर्म से कुछ भी अनर्थ हो सकता है। कांटे की तरह चुभता है, वो शल्य भी बन सकता है। शल्य बन जाए तो सारा डूब गया। किया कराया पुरुषार्थ पहले का कमाया हुआ सारा धन डूब सकता है। आत्मकल्याण करना सत्संग के द्वारा ही संभव है। सत्संग आवश्यक है, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है प्रारंभिक अवस्था में। फिर प्रौढ़ता आने के बाद आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। सही है ना? जैसे एक उदाहरण दिया जा सकता है, 1 करोड़ रुपए गिनने के लिए दिया है हाथ में, और पैसा तो अच्छा लगता ही है हर प्राणी को, पर उस पैसे के साथ यह भी शर्त रखा गया है, यदि गिनती में गलत निकला तो 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा आपको, और यदि सही निकला तो 1 करोड़ रुपए आपके लिए। सिर्फ गिनना है और एक ही बार गिनना है और गलत नहीं गिनना है। और चारों ओर से प्रतिकूल माहौल खड़ा कर दिया, ये गिन न सके, ये भूल जाए, भटक जाए, इस प्रकार से जोर जोर से बजाने लगे, जोर जोर से बातें करने लगे। और शर्त ये है कि यदि ठीक निकला गिनना तो 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, और गलत निकला तो हमारा 1 करोड़ रुपए जाने वाला है। प्रतिकूल माहौल चारों तरफ से खड़ा कर दिया जाए, आपका पुरुषार्थ देखो उस समय कितना सशक्त पुरुषार्थ होगा, बहुत एकाग्र बनेंगे आप। सामने कुछ भी ला करके रख दे, उधर ध्यान नहीं रहेगा। भूख लगी है उधर ख्याल नहीं, प्यास लगी है उधर ख्याल नहीं, और समय भी फिक्स है, इस इतने टाइम में पूरा नोट गिनना है, तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा क्या? आपके ऊपर कोई भी सांप भी आकर के चढ़ करके बैठ रहा है तो ध्यान नहीं रहेगा, सब परिचय सहन कर लेंगे। बिच्छू भी सामने से गुजर रहा है तो उधर ध्यान नहीं रहेगा, वो इधर इधर घिसा करके आप गिनते रहेंगे, बिच्छू से भी नहीं डरेंगे आप। क्यों? टारगेट क्या है? हाँ, 1 करोड़ रुपए टारगेट हमारा है, हमारे होने वाले हैं। कोई इष्ट वस्तु जब हमारा टारगेट बनता है तो इधर उधर हमारा ध्यान नहीं रहता, और उसकी साधना करते करते हम इतने प्रौढ़ बनते हैं कि उस प्रौढ़ता में अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है ये भी भान नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि निमित्त कुछ नहीं कर सकता, ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। भला बुरा होने में हम यदि कमजोर हैं तो भला बुरा हो सकता है, और हम कमजोर नहीं हैं तो निमित्त नो कर्म हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। शल की उत्पत्ति नो कर्म के निमित्त से ही हो सकती है, किंतु हो यह नियम है क्या? एक मुनि महाराज संलेखना ले रहे हैं और उस मुनि महाराज के सामने करोड़ों के नोट की गड्डियां ढेर सारे रख दो महाराज, संलेखना मत लो, ये नोट ये नोट ग्रहण कर लो और सुख सुख से रहो, काय को संलेखना मरण कर रहे हैं और जियो। जो संलेखना लिए हैं या नहीं भी लिए हैं उनके सामने नोट के बंडल ला करके रखेंगे तो क्या प्रभावित होने वाले हैं उससे? नहीं होंगे। प्रतिकूल माहौल है कि नहीं? लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, नोट नो कर्म है, देने वाले नो कर्म है, चारों तरफ से समझाया जा रहा है कि आप ले लो आप ले लो, लेकिन प्रभावित तो होंगे क्या? ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी मुनि महाराज का मन डिगने वाला नहीं, स्वतः डिगना चाहे तो डिग सकते हैं, लेकिन जिनका टारगेट परमार्थ ही है उधर ध्यान क्यों जाएगा? नोट के तरफ नहीं जाएगा। नोट को खोट समझकर जब त्याग किया है, नोट ही खोट है, उसके लिए कैसे देऊं बोट? ये परिग्रह है, ये खोट का कारण है, दोषोत्पत्ति का मूल है, परिग्रह है, इंद्रिय विषय है। यह समझ करके जब 10 प्रकार का परिग्रह त्यागा गया तो उसमें पुनः रुचि नहीं हो सकती। यदि टारगेट में परमार्थ को रख करके त्यागा है तो नोट के प्रति रुचि नहीं होगी, और यदि टारगेट में विषय कषायों को ही रख करके नोट को त्यागा है तो क्या? तो गुणस्थान तो बना ही नहीं है, छठा सप्तम गुणस्थान, और नीचे के गुणस्थान में रहते हुए जीव के जो परिणाम होते हैं वो इंद्रिय विषयों के होते ही हैं। गुणस्थान अगर ऊपर का नहीं है तो नीचे के गुणस्थानों में इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति का भाव रहता ही है, तो वो डिग सकता है, वो कमजोर है। आज साधु है, कल के दिन परिग्रहधारी गृहस्थ भी बन सकता है, उसका क्या भरोसा? ऐसा क्यों हुआ? टारगेट गलत है, इसलिए। टारगेट में क्या होना चाहिए था? मोक्ष होना चाहिए था। पंचेंद्रिय विषयों को त्यागना ही हमारा परम लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। टारगेट में त्याग होना चाहिए था, टारगेट में संयम होना चाहिए था, टारगेट में संवर और निर्जरा मोक्ष तत्व होना चाहिए था, लेकिन वो ना हो करके कुछ जिसको छोड़ रहे हैं उसी को पाने की इच्छा है, तो फिर वह व्रत व्रत नहीं कहलाता, वह सशल्य माना जाता है। सशल्य व्रत आत्मकल्याणकारी नहीं होते। नो कर्म है। नो कर्म द्रव्य शल की कोटि में आता है, और कर्म का जो उदय होता है, मोहनी कर्म का उदय, वह कर्म भी अचेतन होने से, आत्माश्रित होने से, वह भी द्रव्य शल की कोटि में आता है। अचेतन है ना, कर्म का उदय अचेतन है, पर कर्म का फल जो भोगता है राग द्वेष आदि करता हुआ जीव, वह राग द्वेष आदि भाव चेतन है, राग भाव चेतन है क्या? चेतन है, पर राग भाव की उत्पत्ति में जो कारणीभूत कर्म है वो तो अचेतन है। ये अचेतन कर्म का उदय द्रव्य शल्य है, जिस द्रव्य शल्य के जो कि अंतरंग निमित्त है, आत्मा से उदित होता है इसलिए अंतरंग, इसके निमित्त से भावों की उत्पत्ति होती है और भावों में शल्य उत्पन्न होता। कर्म के उदय से भाव, भाव से भावों में शल्य, भाव शल्य की उत्पत्ति, और कर्म का उदय होने के लिए नौ कर्म कारण पड़ता है। जैसे कल के दिन उदाहरण सुनाया था, वह राजा अपने छोटे पुत्र को ज्यादा धन देना चाहता था। धन नौ कर्म, पुत्र भी नौ कर्म, और वह दे नहीं पाया, ऐसा ही मरण हुआ, त्रेंच गति में जन्म हुआ। ये शशल्य होने से ही हुआ ना, जो करना था वह काम कर नहीं पाए और मन में रह गया। जब लोग मरण करते हैं तो घर के लोग भी बहुत होशियार रहते हैं, मरने से पहले उस मरने वाले जीव को पूछते हैं, आपकी अंतिम इच्छा बताइए। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? क्यों पूछते हैं ये? ये जानकारी लेना चाहते हैं कि अंतिम इच्छा के माध्यम से ये मन में कोई शल्य तो नहीं रखते, मन में कोई इच्छा तो नहीं रखते। यदि इच्छा रखते हैं और हमको नहीं बताया तो इच्छा सहित मरण इसका नहीं होना चाहिए। उस इच्छा की पूर्ति यहीं पर कर लेते हैं और वो पूर्ण करके तृप्ति के साथ जाए। अगर वह राजा पुत्र को अपना धन सौंप करके चला जाता तो शाम बन करके घर में नहीं आता, वो विकल्प बच गया इसलिए आ गया वह। लोग इसलिए पूछते हैं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो वह बता देता है, हमारी अंतिम इच्छा छोटे पुत्र को ज्यादा धन देना। हाँ हम दे देंगे, चिंता मत करना। तो इतने में उसका विकल्प छूट जाता है, हम दे देंगे चिंता मत करना। हाँ आप दे दोगे ना, दे दोगे ना, दे देंगे चिंता मत करना। अब वो विकल्प छोड़ देता है और मरण करता है। विकल्प रख करके मरण करेंगे तो त्रेंच गति में भी हो सकता है वो चला जाए। आयु कर्म का बंध अंतिम समय तक संभावना रहती है और उसमें त्रेंच शल्य सहित मरण हुआ तो त्रेंच आयु का बंध हो भी सकता है और त्रेंच गति में जा भी सकता है। इसलिए मरण करते समय लोग उनको निर्विकल्प बना देते हैं। एक विज्ञानी था, उनको अंतिम इच्छा पूछी गई, यहां पर लगा है बोर्ड पर, पढ़ा है आप लोगों ने, जो इस युग का, इस 21वीं 20वीं शताब्दी में परमाणु का आविष्कार किया, परमाणु शक्ति का, उनका नाम लॉर्ड आर्वर्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टाइन उनके शिष्य थे। मरण से पहले उनसे वे सब मिल करके पूछते, आप इतने बड़े वैज्ञानिक ज्ञानी और इतने बड़े तत्वों का आपने खोजबीन किया और ऐसी खोज आपके द्वारा दुनिया में सबसे पहली हुई, लास्ट में आप मरण तो कर रहे हैं लेकिन हम पूछना चाहते हैं सब मिलकर के, आपकी अंतिम इच्छा बताइए। तो वो कहते हैं, हमारी अंतिम इच्छा यही है क्या बताया है? क्यों, किस लिए? हाँ, भौतिक विज्ञान में खोज तो बहुत कुछ हो गई, लेकिन एक बात की खोज वो कर नहीं पाए थे कि पुनर्जन्म होता है क्या नहीं, पुनर्जन्म है क्या नहीं, इस पर पूरा ज्ञान खोज भी नहीं हुआ था। और इस बात की खोज के लिए उनको अंत अंत में कुछ पढ़ने के लिए साहित्य मिला, जो महावीर भगवान की परंपरा से लिखित जो आचार्यों के साहित्य उससे मिला, उनसे उनको उनने कुछ साहित्यों को पढ़ करके समझा होगा कि पुनर्जन्म भी होता, और वो जैन धर्म के ग्रंथ थे, कुछ पढ़ा उन्होंने, और भगवान महावीर ने बताया है कि पुनर्जन्म भी होता है, और भगवान महावीर को सारी दुनिया मानती है। और इस विषय में, इस दिशा में मैंने खोज नहीं किया। अब उस बात की भी खोज करने के लिए वे चाहते थे, परंतु जीवन नहीं रहा। ये भी एक बात खोज लूं, होता है कि नहीं पुनर्जन्म, किसी न किसी प्रकार से आविष्कार कर लूं आत्मा है क्या नहीं, आत्मा मरण के पश्चात यहाँ से वहाँ जाता है क्या नहीं, इसको प्रैक्टिकल रूप से कुछ खोजबीन कर लूं। इच्छा तो बहुत थी लेकिन जीवन नहीं था। उन्होंने अंतिम इच्छा के रूप में यह इच्छा व्यक्त की, पुनर्जन्म हो या न हो ये बाद की बात है, लेकिन पुनर्जन्म है या नहीं इसको देखने के लिए मेरा जीवन शेष नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि इस विषय को खोजने के लिए मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा। अगला जन्म अगर पुनर्जन्म है तो भारत में मेरा जन्म है, यदि पुनर्जन्म है तो मेरा जन्म भारत में हो, और उसमें भी जैन परंपरा में जन्म, जैन कुल में जन्म, और जन्म लेने के पश्चात ऐसे साहित्य को पढ़ करके मैं और कुछ खोजबीन करूं, ये इच्छा व्यक्त की। ये कौन सी इच्छा? ये शल्य प्रशस्त है, प्रशस्त है, ये शल्य नहीं, भावना है। हाँ, सुनाई नहीं देता। हाँ, रेफरेंस कहाँ से दिया है? नहीं है तो किसी ग्रंथ से ही दिया है, वहां लिख नहीं पाए हैं, लेकिन है तो किसी ग्रंथ से उल्लेखित किया है, प्रामाणिक है। हाँ, बहुत प्रचलित, प्रसिद्धि में हाँ, विनोबा भावे की भी है, वहां पर तो दो तीन लगाया है, लाल बहादुर जी, हाँ, राष्ट्रपति का भी एक है, उसमें राष्ट्रपति का भी है, अब्दुल कलाम की, नौ कर्म द्रव्यशैली के तीन भेद हैं, सचित्त नौ कर्म द्रव्यशैली, क्या क्या आते हैं देखिए, नौकर, माता पिता भाई बहन राजा मित्र पशु इत्यादि जो भी चेतन हैं, ये सभी भाव शल्यो, हाँ, सचित चेतन यानी सचित, सचित हैं भाव शल्योत्पत्ति के बहिरंग सचित नौ कर्म द्रव्य शल्य, यानी इन नौ कर्म द्रव्य शल्य से भाव शल्य की उत्पत्ति हो सकती है, हो ये नियम नहीं, परंतु यदि होगी तो नौ कर्म द्रव्य शल्य के कारण से भी शल्य की उत्पत्ति होगी। दूसरा भेद है अचित्त नौ कर्म द्रव्य शल्य, सोना चांदी आभरण वस्त्र मोती रत्न धन इत्यादि ये सब भाव शल्योत्पत्ति के कारणभूत बहिरंग अचित्त नौ कर्म द्रव्य शल्य है। अचेतन वस्तु, सोना चेतन अचेतन, अचेतन है। चांदी, आभरण, वस्त्र, मोती, रत्न, धन, ये सब अचेतन वस्तु है। इनको लेकर के भी क्या जीव सशल्य नहीं हो सकता? हो सकता है किसी को अपने आभूषणों के प्रति राग रहता है और बहुत सारे आभूषण घर में रखे थे और मरण काल में किसको दूं किसको दूं, दिया तो नहीं है और इनको देना था लेकिन दे नहीं पाए, तो वही स्थिति होगी जो राजा का हुआ था। होता है ऐसा, किसी को धान्य के प्रति राग रहता है, मरण काल में उनको धान्य देना था और धान नहीं दे पाए और वह विकल्प रह गया और विकल्प के साथ मरण हो गया, तिरंच आयु का बंद किया और धान्य में आकर के त्रिगुला बन गए। हो सकता है कि नहीं? तो मरण काल में कैसे रहना चाहिए? कोई भी नौकर्म से प्रभावित नहीं रहना, किसी भी नौकर्म से राग द्वेष नहीं रखना। आसक्ति के परिणाम सारे समाप्त हो जाना चाहिए। मैं अकेला आत्मा हूं, मेरा कुछ भी नहीं, तीन लोक का यह पदार्थ एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसा संकल्प लेकर निर्विकल्प होना चाहिए मरण के काल में। तब कहीं जाकर संलेखना मरण, निर्विकल्प मरण, इच्छा रहित मरण होता है। मरण के काल में आपके सामने रहने वाले रोते हैं, आप जा रहे हैं इसलिए, आप जा रहे हैं इसलिए रो रहे हैं, और आप उनको छोड़ रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। मुझे छोड़ना पड़ रहा है, ये मेरा बेटा, मैं इसको छोड़ करके जा रहा हूं। होता है क्या? नहीं, जीव मोह से ही मरते हैं संसार में, और यह मोह का मरण बड़ा डेंजर है, संसार में ही जन्म करा देता है, चार गति में ही जन्म कराएगा। ये निर्मोह मरण, संलेखना मरण, वो चतुर्गति में जन्म नहीं कराएगा, बचाएगा, भावों को कम कराएगा। क्या बताया, पांचवें गुणस्थान में भी मरण करने वाला अधिक से अधिक आठ भाव, कम से कम तीन भाव बचा लेता है। ये किसका सामर्थ्य? निश्चल्य, निर्मोह, अनासक्त, निर्मोह परिणामों की शक्ति है। ऐसे मोह रहित बनकर कौन मरते हैं? कोई नहीं, सभी मोही बनकर के ही मरते हैं। मोही बनकर मरना एक तरह से ये बहुत बड़ा अज्ञान है। मरण क्या है ये समझा ही नहीं, जन्म भी क्या है ये भी समझा नहीं, बस जिंदगी गई। जब युवा अवस्था में थे ऐसे समझते थे धर्म अभी करना चाहिए क्या, वो तो बूढ़े होने के बाद है? ना आत्मचिंतन, ना तत्व चिंतन, ना स्वाध्याय, ना सत्संग, ना मंदिर, ना सामायिक, ना जाप, ना चिंतन, कुछ भी नहीं, केवल संसार जीने के लिए ही आए थे क्या? शरीर में जन्म लेना और भोग सामग्री को भोगना और मरना, इसके लिए आए थे क्या? बहुत बड़ा अंधकार है ये जीवन का। जिसके जीवन में धर्म नहीं, उसका जीवन शुरू ही नहीं हुआ। एक बार ऐसा मरण करो जिस मरण को अपन ज्ञानादिकाल से नहीं किया है। ज्ञानी होकर के मरना है, अनासक्त होकर के मरना है, निर्मोही होकर के मरना है। ये थोड़ी साथ आने वाले हैं, धन संपत्ति परिवार बेटा बेटी, माँ मरण कर रही है तो बेटी 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 कह करके मरण कर रही, बेटा 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 बेटा, और बेटे मरण कर रहे हैं तो माँ 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 करके, यही तो होता है ना। जो सामने रहते हैं ये सब नौकर्म है, इनसे ही मोह होता है। और ऐसे संबंध पिछले भव में भी थे क्या नहीं? हाँ, आपके माँ बाप बेटे पहले भी थे क्या नहीं? थे, तो वो क्यों याद नहीं आते? उनको याद करके एक बार मरो ना, वो भी नौकर्म है, ये भी नौकर्म है, दोनों नौकर्म है। उसके पिछले भव में भी थे, उसके पिछले भव में भी कोई ना कोई हमारे संबंधी थे, वो अपने नहीं थे क्या? तो उनके लिए क्यों नहीं आप रोते, उनके लिए क्यों नहीं मरण करते एक बार याद करके? ये नहीं होता, जो सामने दिखता है उसको देख देख करके उसी में डूब जाते हैं, उसी में प्रभावित होते। सामने वाले नौ कर्मों को भी ऐसा ही समझना चाहिए जैसे पहला भी एक परिवार हमारा था, उसके समान ये भी है। मैं जब उसका मोह नहीं करता तो इसका मोह क्यों करूं? ऐसा चिंतन करना चाहिए। अनंत जन्म में अनंत माता पिता हो गए, बेटे हो गए, बेटियां हो गई, संपत्ति भी थी, धन संपत्ति सोना चांदी सब था। उस बहू की सोना चांदी संपत्ति, उस बहू के परिवार को याद क्यों नहीं करते आप? याद नहीं आता, लेकिन वो थे, इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह नहीं है ना। फिर संदेह ना हो करके भी एक बार परोक्ष रूप से याद करो मरण करते समय, एक बार ऐसा प्रयोग करो कि हम सामने वाले को याद नहीं करेंगे। और परोक्ष रूप में जो थे पहले छोड़ करके आए हैं, उन्हीं को याद करके एक बार मरेंगे, चलो क्या होता है देखते। लेकिन परोक्ष रूप में जो अपन छोड़ करके आए हैं ना, उनके प्रति कितना भी मोह करने का प्रयत्न करो, मोह होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मरण के काल में भी याद करने का प्रयत्न करोगे तो भी नहीं होगा, सामने दिखते नहीं। तो देखो शल्य में नौ कर्म को भी रखा, कितना सशक्त है ये नौ कर्म द्रव्यशील। ये नौ कर्म द्रव्यशील जो वर्तमान में होता है इसमें कितनी पावर है, पहले भी था उसमें पावर नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो सामने है उसमें कितनी पावर है। आपको शल्य पैदा कर सकता है, आपको मोह पैदा कर सकता है, आपके भावों को बिगाड़ सकता है, आपकी गति को ध्वस्त कर सकता है, सदगति को। कोई फर्क नहीं, अभ्यंतर परिग्रह है ना ये। मिथ्या तो कौन सा परिग्रह है? अंतरंग परिग्रह। कषाय कौन सा परिग्रह है? अंतरंग परिग्रह। इन्हीं कषाय भावों को तो शल्य बताया जा रहा है। ग्रंथि, ग्रंथि यानी परिग्रह, गांठ। और यह गांठ बहुत मजबूत है तो शल्य है, ढीला है तो शल्य नहीं है कैंसर का गांठ, कैंसर का गांठ करने वाला कैंसल गांठ, हम जीवन से ही कैंसल कर देता है कैंसर। नहीं, वो एक तात्कालीन इच्छा शक्ति है, तात्कालीन इच्छा शक्ति है। शल्य तो ऐसा होता है कि इनको आज नहीं मारू, ना मार नहीं पाऊंगा तो अगले भव को तो इनको मारूंगा, ये शत्रुता, शत्रुता उसको, हाँ वैर, वैर बोलते हैं उसको, वैर तो शल्य है। नहीं सुनो तो वैर शल्य की कोटि में आएगा, तात्कालीन इच्छा तो शल्य की कोटि में नहीं आता। नहीं मार पाया उसकी इच्छा शक्ति पूर्ण नहीं हुई, वो इच्छा को छोड़ देता है। लेकिन वैर वाला इच्छा को नहीं छोड़ता, जो वैर रूप भाव उसको मारने के भाव कालांतर में भी चले तो शल्य कहलाती, वो निरंतर चुपती, कमट और पार्श्ना। वैर, हत्या और विरोध मरण के काल में नहीं रहना चाहिए। ये तीन चीजें, वैर, हत्या और विरोध मरण के काल में कभी नहीं रहना चाहिए। मरण से पहले इन तीनों को त्यागना चाहिए यदि हो तो। क्यों त्यागना चाहिए? ये शल्य बन जाएगा। परभव में भी ये साथ में आ रहा है तो शल्य है। मरण के काल में त्यागना चाहिए। तीसरा भेद है मिश्र नौकर्म द्रव्य शल्य। ग्राम, नगर, देश, राज इत्यादि ये भाव शल्योत्पत्ति के कारणीभूत बहिरंग मिश्र नौकर्म द्रव्य शल्य हैं। मिश्र हैं ये। ग्राम मिश्र कैसे है? हाँ, ग्राम यानी गांव हो गया, उसमें चेतन पदार्थ भी होता है, अचेतन पदार्थ भी होता है। जैसे एक राजा गांव का मालिक अपने को मानता है, तो आप सब लोगों को, प्रजा को अपना मानता है वो, और आपकी संपत्ति को भी अपनी संपत्ति मानता है। अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानता ही है, लेकिन आप भी अपने हैं, आपकी संपत्ति भी अपनी है, ये मानता है। तो ये मिश्र हो गए। गांव अचेतन, इसमें सोना चांदी इत्यादि भी है, धन संपत्ति इत्यादि भी है, और नौकर चाकर भी हैं, परिवार भी है, और प्रजा भी है, पशु भी है, इसलिए मिश्र कहलाया। ग्राम इत्यादि मिश्र शल्य, ग्राम भी कारण बन सकता है राजा को। राजा को बहुत अच्छा लगा ये गांव, और राजा ने संकल्प ले लिया कि मैं ही पुनर्जन्म लूं तो इसी गांव में लूं। इस संकल्प के साथ मरण करता है तो शल्य हो गया है? वो ठीक है, वो अलग। एक कवि था पंप, वो कहता है कि जहां पर वो पंप कवि ने रामायण लिखा है, पंप रामायण, एक रामायण है। रामायण लिखते समय वो वनवासी में था, वनवासी एक अरण्य का प्रदेश, बहुत सुंदर अरण्य। वहाँ बैठ करके जब रामायण की रचना करते थे तो वह इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर वर्णन करता है, वर्णन करते करते उस वर्णन में डूब जाता है वो। अब उस वर्णन में जितना उन्होंने वर्णन किया है, उस वर्णन के अनुकूल वह वन था या नहीं यह अलग बात है, पर कवि तो कवि होता है, रूखा सूखा वन को भी हरा भरा बना देता है। तो कवि वर्णन करते करते वन का इतना वर्णन किया कि ऐसा वन है, और ऐसे वन में वो अंत में उस सुंदरता के वर्णन करते करते अपने भावों को व्यक्त करता है कि ऐसा ये वन है, इतना सुंदर है, मैंने ऐसे वन को कहीं नहीं देखा। अगर मैं पुनर्जन्म में अगर जन्म ले लूं तो इसी मैं मनुष्य नहीं बन सकूं, ठीक है, अगर मैं तिरेंच गति में भ्रमर भी बनूं तो इसी वन का भ्रमर बनूं। लेकिन ये शल्य नहीं, इस शल्य की कोटि में नहीं आएगा। ये दूसरे को समझाना चाहता है कि वन कितना सुंदर था, श्रृंगार, हाँ, सुंदरता का वर्णन करते करते कवि ये समझाना चाहता है कि देखो मेरे भाव ऐसे होते हैं, मेरे भाव भी ऐसे हो सकते हैं तो कितना सुंदर होगा, ये कहना चाहता है। पर भ्रमर बनूं और वहीं जन्म लूं, ऐसी आशा नहीं, उद्देश्य नहीं, शल्य नहीं, संकल्प नहीं, पर वन के सुंदरता की कोटि में खुद को भी ले लिया, कंपेयर कर लिया, यानी वन इतना सुंदर है कि मैं भी वहां पर पुनः जन्म ले लेना चाहता हूं, यानी मेरे भाव ऐसे हुए, यानी अपने भावों की उत्कृष्टता को दर्शाया। परंतु उनको अंतरंग से पूछा जाए क्या वन इतना सुंदर था, क्या वास्तव में आप वहीं पर जन्म लेना चाहेंगे, तो नहीं थी, नहीं नहीं चुपचाप रहो, ये तो समझाने के लिए है। यानी वनवासी की ओर पाठक को आकर्षित करना है ना, इसलिए लिखा, वो शल्य नहीं। मिश्र नो कर्म द्रव्य शल्य, अपने देश के प्रति अपने को अनुराग होता है, ग्राम के प्रति अनुराग होता है, नगर के प्रति अनुराग होता है, महल के प्रति अनुराग होता है। देखो महल ये कौन सा शैली, मिश्र है, नहीं मिश्र है ना, एक महल में परिवार समेत है, चेतन अचेतन दोनों हैं। हाँ दासी दासी, महल मिश्र नो कर्म द्रव्य शैली, ग्राम मिश्र नो कर्म द्रव्य शैली, देश मिश्र नो कर्म द्रव्य शैली, राज्य राज्य भी प्रांत भी। किसी को ऐसे भाव हो जाए अगले जन्म में आपको एमपी में जन्म लेना है, एमपी में नहीं चाहिए क्योंकि हिंदी नहीं आती हमको, हमको तो महाराष्ट्र में ही जन्म लेना, महाराष्ट्र राज्य ही ठीक है। अगले जन्म में आपको अमेरिका में जन्म लेना है और करोड़पति बनना है, नहीं नहीं करोड़पति बनने की जरूरत नहीं हमें, वहां पर धर्म कर्म कुछ नहीं होता, हमको भारत में ही जन्म लेना है। तो भारत का विकल्प, लेकिन धर्म की दृष्टिकोण से ऐसा विचार करते हैं तो शल की कोटि में नहीं आता, भावना की कोटि में आता है। हम आर्यखंड में जन्म ले ताकि धर्म कर सके, हम उच्च कुल में जन्म ले ताकि हम वहां धर्म कर सके, सत्संग मिल सके, ऐसे भाव ये भावना की कोटि में आए, ये प्रशस्त निदान कहलाता है, प्रशस्त निदान शैल, उत्तम कुल, सवनन आदि की इच्छा, उत्तम सहनन मिले, उत्तम कुल मिले, सत्संग मिले, ऐसा माहौल मिले, ये भावना है। लेकिन इसको भी करना जरूरी नहीं, नहीं वो तो मिलता है, अपने आप मिलता है। किसी भी अच्छी चीज को पाने के लिए इच्छा ही करना पड़ता है, ये अंधश्रद्धा है। इच्छा करने से ही मिलता है ऐसा नहीं है, इच्छा के बिना ऑटोमेटिक कर्म तो आपको जहां पर जन्म दिलाना है, जो कुछ देना है दे ही देते हैं। आपका काम इच्छा भी नहीं, इच्छा नहीं भी करेंगे तो कर्म तो आपको अच्छा काम ही कर देते हैं। नियम है सशल्य मरण को, मरण के काल में जीव को उसी गति में जन्म होता है जो इच्छा रखता है, क्योंकि उसके पीछे श्रम भी करता है वो। हाँ कोई भी हो, किसी भी आयु का बंद क्यों न किया हो, हाँ शल्य से मरण कर सकता है। मुझे इंद्र पदवी मिले, अहमेंद्र पदवी मिले, ऐसी क्या कामना द्रविलिंगी मुनि को नहीं होती? शास्त्रों में उदाहरण आया है, इंद्र पदवी की इच्छा, क्या इंद्रिय भोगों की इच्छा नहीं? ऐसे परिणाम नहीं होते। ऐसे कैसे? देखो, पहले से ही तैयारी होती है शल्य की, पहले से मरण से पहले से ही तैयारी चलती है कि मुझे ये चाहिए। तो वो चाहिए है तो फिर ये चाहिए, दोनों कैसे? एक ही पदार्थ की इच्छा रखता है ना जीव, दो पदार्थों की एक साथ इच्छा नहीं रखता। जो इष्ट है उसमें उसी को चाहता है। हाँ वो तो है ही है ही, लेकिन वस्तु दो की इच्छा नहीं रखता एक साथ। मैं इधर उत्तम कुल में मनुष्य गति में जन्म लूं ये भी इच्छा, और इंद्र पदवी पाऊं ये भी इच्छा, नहीं हो सकता। सामने जो वो बनना चाहता है उसकी इच्छा ज्यादा करता है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, वो एक ही प्रकार की इच्छा रहती है। आइंस्टीन ने दो इच्छाएं व्यक्त नहीं की, एक ही। जैन कुल मिले, पुनर्जन्म यदि है, यदि ये बात सत्य है तो जैन कुल में मैं पैदा हो जाऊं और वो साहित्य पढ़ूं कि पुनर्जन्म होता क्या है, इसके बारे में संशोधन करूं। दो इच्छा नहीं होती कभी भी। शल्य कैसे कहोगे? हाँ होता होगा। नहीं, देखो ये कला वाली बात है। हाँ अपनी कला, नहीं कोई शैली नहीं है ये, कोई शैल की कोठी में कैसे बिठाओगे? ये तो ये काटने वाला है, हाथ काटने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने हथौड़े से मार करके उसको लीकेज कर दिया, तो ये थोड़ी शल्य थोड़ी हुआ। ये शल्य जो होता है ना, परभव की इच्छा को लेकर के होता है। इस भाव में इच्छा है और इसी भाव में इच्छा की पूर्ति हो गई तो शल्य की कोटि में थोड़ी आएगा। सशल्य जीव, हाँ ठीक है, ये ठीक है कि परभव की इच्छा को रखते हुए इस भाव की इच्छा को भी रखता है तो वो शल्य है, पर शल्य निरंतर होता है। शल्य किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए निरंतर चलता है। शल्य उसी को कहते, कांटे की उपमा दी है शल्य को, जो निरंतर कांटा जैसा चुभता है। आप बैठ गए हैं तो बैठ गए, तब तक नहीं चुभ रहा है, लेकिन चलते हुए आप जब भी चलेंगे तब चुभेगा, निरंतर चुभेगा, जीवन भर चुभेगा। जब तक आप उसको अलग नहीं करेंगे पैर में से, तब तक चुभता ही रहेगा। वो क्या है, एक प्रदर्शन है केवल, मुझे ये तोड़ना है। उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि हाथ टूट रहे हैं इसलिए इसको तोड़ना है, तोड़ दिया। शल्य नहीं है ये, मिश्र नोकर्म द्रव शल्य, शल्य का चार्ट एक तरफ का पूरा हो गया, भाव शल्य रह गए। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।